संपूर्णता का कवि प्रत्येक युग में रचना सक्षम संघर्षशील और स्वतंत्र चेता कवि के बारे में अक्सर एक विशेष प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। उसके बारे में उसके जीवन काल में ही उसकी काव्य रचना को लेकर अनेक प्रकार की परस्पर विरोधी प्रशंसात्मक आंशात्मक चमत्कारपूर्ण और चौंकाने वाली विचार पद्धतियां सामने आती हैं। इसके आलोचक और प्रशंसक जब तक उसके बारे में एक विशेष विचार कसौटी का निर्धारण करते हैं, तब तक अपनी रचनाशीलता और सत्योपलब्धि में कवि किसी दूसरे बिंदु पर खिसक जाता है। अक्सर कवि के अंदर ही यह सतत रचनात्मक गतिशीलता उसके आलोचकों प्रशंसकों और विरोधियों सभी को एक साथ चौंकाती है, उन्हें हतप्रभ करती है। उनकी विचार कसौटियां या आग्रहों दुराग्रहों सदाग्रहों को काटती चलती है। अक्सर प्रशंसक घोर विरोधियों में बदल जाते हैं या तटस्थ उदासीन हो जाते हैं, चाहे उनके आग्रह और उनकी आशाएं कवि की विचार सरणी के निकट ही क्यों ना हो। कवि की गतिशीलता के साथ ही वे अपने को गतिशील नहीं बना पाते और इस तरह जो सदाग्रह होता है उसी से एक घोर विरोधी अथवा कुतर्कपूर्ण पूर्वाग्रह का निर्माण होता है। विरोधियों और निंदकों या ना समझों के लिए तो कवि की यह सतत गतिशीलता उनके पूर्वाग्रहों के लिए और अधिक सामग्री जुटाती चलती है। अंततः इन सारी बातों से एक विचित्र सी भ्रांत और छद्म धारणा का निर्माण होता है। इसी भ्रांत धारणा से या आलोचना के ऐसे ही सर्व प्रचलित मिथ से समालोचना और युग की कसौटियां तक कभी कभी निर्धारित होने लगती है और साहित्य के विद्यार्थी के लिए कवि के काव्य वैभव तक सीधे पहुंचना और उसका पुनर्मूल्यांकन या सही मूल्यांकन करना असंभव नहीं तो कुछ कठिन अवश्य हो जाता है। अक्सर आलोचकों की इसी भ्रांत विचार प्रणाली को देखकर कोई भी कवि अपने ऊपर वह नैतिक दबाव महसूस करता है जिसके वशीभूत होकर वह पाठक और काव्य मर्मज्ञ को सीधे अपने काव्य वैभव तक पहुंचाने के लिए इन धारणाओं को काटता है और कविता की व्याख्या का बुनियादी उत्तरदायित्व भी स्वयं ही वहन करता है। यह सवाल अपने मूल में आलोचना की कसौटी और मूल्यांकन दृष्टि से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस सवाल का संबंध किसी सर्व स्वीकृत कवि से नहीं है। यह सवाल किसी भी ऐसे रचनाकार से जुड़ा हुआ नहीं है जिसकी एक काव्य रूढ़ी निर्मित हो चुकी हो या जो अपनी कला सचेतना और अनुभूति निर्माण में सतत गतिशील न हो या जो आलोचनापेक्षी प्रशंसापेक्षी हो या जो अपने अंदर के सतत उद्वेलनों या भाव संघर्षों से प्रताड़ित और पीड़ित न होकर संतुष्ट निर्विकार और निश्चिंत हो, कौमा अथवा काव्य सचेतना के मूल उपादानों से दूर हट गया हो। आलोचना की कसौटी और मूल्यांकन दृष्टि का सवाल भी, कौमा जैसे कि कहा गया है, कौमा एक रचना सक्षम संघर्षशील और स्वतंत्र चेतक कवि के साथ जुड़ा ही हुआ है। इसे हम कवि व्यक्तित्व की विवादास्पदता भी कह सकते हैं। कवि के व्यक्तित्व का इस रूप में विवादास्पद होना उसकी जीवंतता और शक्तिमत्ता का प्रमाण है। इस तरह आलोचना की कसौटी और मूल्यांकन दृष्टि मुख्यतः कवि के जीवंतता और गतिशील शक्तिमत्ता के स्वीकार से जुड़ी हुई है कि आलोचना और मूल्यांकन संपूर्णता एक स्वतंत्र आलोचक अथवा मूल्यांकनकर्ता की अपनी विचार पद्धतियों को निर्मित करने की कार्य पद्धति है या उसे कवि के जीवंत और शक्तिमंत काव्य वैभव के अंदर से होकर आना चाहिए। इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस उठाई जा सकती है जिसके लिए यहाँ जगह नहीं है। फिर भी सत्य का पक्ष ही यही है कि आलोचना मूल्यांकनकर्ता के विचारों का कवि रचनाकार के ऊपर आरोपण नहीं है, बल्कि कविता के अंदर से होकर आने वाली उसकी कविता की जीवंतता और शक्तिमत्ता को खोलने वाली एक उत्तरदायित्वपूर्ण संरचना है। पैराग्राफ चेंज। महाकवि श्री सुमित्रा नंदन पंत के समस्त काव्य वैभव का एक तथस्थ और संपूर्ण विवेचन प्रस्तुत करने के लिए इस भूमिका के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आज सन 1968 ईस्वी में जब पंत जी 69वें वर्ष में प्रवेश जन 20 मई 1900 ईस्वी कर चुके हैं और उनके अदम्य साहसी जीवंत और शक्तिशाली रचनात्मक व्यक्तित्व के लगभग 50 वर्ष हमारे सामने हैं, अर्थात 50 वर्षों का रचित काव्य वैभव जो अपने स्वतंत्र चेता निर्णयों और अपने सतत गतिशीलता के कारण लगातार तथाकथित आलोचना मिथों का निर्माण अपने इर्द गिर्द करता रहा है जबकि उनके प्रशंसक उनके घोर विरोधी हो गए हैं अथवा तटस्थ और उदासीन, जबकि उनके रचनाओं और भावबोधि की नई नई दिशाओं के सतत अन्वेषण ने अनेक विरोधियों के लिए पूर्वाग्रहों और गलत व्याख्याओं और तरह तरह के विवादों को जन्म देने के लिए और अधिक उत्तेजित किया है। प्रस्तुत उपयुक्त भूमिका का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ स्पष्ट कर देना उचित होगा कि प्रस्तुत मूल्यांकन की दृष्टि पंत जी की उस सतत संघर्षशील गतिमय और अनेक स्तरीय काव्य संपदा के अंदर से होकर आने वाली दृष्टि होगी। कम से कम प्रस्तुत मूल्यांकन का प्रयास इसी दिशा में होगा। अक्सर पंत जी के काव्य संरचना की विभिन्न दिशाएं अनेक प्रकार के गलत विवादों और आलोचना मानों को जन्म देती रही है और इन बचकाने किंतु तथा कथित गंभीर प्रयासों में कहीं भी कवि व्यक्तित्व की गतिशील अंतःसंगति को नहीं ढूंढा गया है। यह बात निसंदेह रूप से स्वीकार की जा सकती है कि पिछले 50 वर्षों के दौरान काव्य में गतिशीलता और उसके अन्वेषण की नई दिशाओं को लेकर जितना विवादास्पद व्यक्तित्व कवि पंत का रहा है और आज भी बना हुआ है, इतना किसी दूसरे समकालीन या उत्तरकालीन कवि का नहीं रहा। यह विवादास्पदता भ्रमवश उत्पन्न न होकर कवि की अंतःसंरचना के क्षणों और निर्णयों से लगातार एक तादात्म्य स्थापित न कर सकने की काव्य मर्मज्ञों की क्षमता के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। मूल्यांकन दृष्टि की इसी पृष्ठभूमि में हम पंत जी के काव्य की विशिष्टताओं उपलब्धियों और उसकी अंतःसंगति का सम्यक और एक संपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते हैं। 2. श्री सुमित्रा नंदन पंत के काव्य वैभव एवं विकास का एक संपूर्ण मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए पहले यहाँ छायावादी काव्य की देशीय और अंतर्देशीय पृष्ठभूमि और परिस्थितियों और संदर्भों पर संक्षेप में विचार कर लेना उचित होगा। यह निश्चित है कि इस शताब्दी के पूर्वार्ध के 3 दशक कौमा जिसमें छायावादी कवि की मानसिक और कला चेतना संबंधी धारणाएं निर्मित और परिपुष्ट हुई कौमा एक व्यापक जन जागरण का समय रहा है। इस जन जागरण की मूल प्रेरणा के रूप में महात्मा गांधी कौमा स्वामी रामकृष्ण परमहंस कौमा स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद तथा महाकवि टैगोर रहे हैं। गांधी जहां इस व्यापक जागरण के राजनैतिक और आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, वहीं स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद या महर्षि अरविंद ने इसको भारतीय संस्कारिक और सांस्कृतिक अध्यात्म और सार्वभौमिक अंतश्चेतना और राष्ट्र प्रेम से जोड़ने में अधिक योग दिया है। ब्रैकेट गांधी का अध्यात्म निश्चय की इन लोगों से अलग तरह का अध्यात्म है। टैगोर ने इस जागरण को एक कलात्मकता भारतीय पावनता और व्यक्ति के नैतिक निजत्व से जोड़ा। हमारी परतंत्रता ने महर्षि अरविंद या स्वामी विवेकानंद जैसे योगियों और धर्म नेताओं की सारी चेतना को भी इस तरह प्रभावित किया कि एक और यदि वे अपनी सारी साधना और सारे ज्ञान को व्यक्ति के निजत्व परिष्कार की ओर लगाते दिखते हैं तो दूसरी ओर उन्हें अपने दलित देश और जाति और जन समूह के उत्थान और उसकी मुक्ति की कल्पना और कार्यशीलता भी अभिभूत किए हुए है। हमारी परतंत्रता वह प्रमुख कारण है जिसने उस काल में उत्पन्न इन मनीषियों के अपने ज्ञान और दर्शन का विकास किसी एक ही दिशा में नहीं होने दिया। यदि भारतवर्ष स्वतंत्र होता तो संभव था कि स्वामी विवेकानंद यौगिक क्रियाओं का अध्ययन अनुशीलन और प्रचार में ही लगे रहते और उनकी यह विराट शक्तिमत्ता और राष्ट्र प्रेम और समस्त दर्शन की पुनर्व्याख्या और पश्चिम और पूर्व के विशाल ज्ञान चिंतन धर्म और संस्कार की तुलनात्मक विवेचना और उपलब्धि से हम वंचित रह जाते। देश की अधःपतित मनोदशा को ध्यान में रखकर ही विवेकानंद ने कहा था कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां हर दो आदमी इकट्ठे होने पर एक दूसरे से लड़ बैठते हैं साथ ही भारतीय मनुष्य की छिपी हुई शक्ति की ओर इशारा करते हुए उन्होंने यह भी कहा था एक दिन हम सारी दुनिया में आग आदर्श प्रेम और पवित्रता की आग से यहाँ मतलब है लगा देंगे हमारी परतंत्रता की हमारी परतंत्रता ही वह प्रमुख कारण है जिससे उस काल का प्रत्येक मनीषी एक अर्ध चिंतक और अर्ध दार्शनिक बनकर रह गया है और उसे अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रमुख अंश इस व्यापक जागरण को और अधिक समृद्ध बनाने में लगाना पड़ा है। वह एक प्रकार से हमारी विडंबना या विवशता और तात्कालिक नैतिक दायित्व की मांग दोनों ही थी। बहरहाल कहने का तात्पर्य यह है कि इसी विवशता और नैतिक दायित्व की मांग के अंदर से तत्कालीन भारतीय साहित्य और कविता उद्भूत हुई है। छायावाद पूर्व युग के सॉरी छायावाद पूर्व के युग की कविता में एक सीमित राष्ट्र प्रेम और अंध पुरातन श्रद्धा और विश्वास अधिक था। वह अंदर की एक दोहरी चेतना से पीड़ित और उद्भ्रांत नहीं था। द्विवेदी युग के कवि के निर्णय बड़े ही सरल और संदेह रहित होते थे। उसके सामने उस तरह से कुछ भी अस्पष्ट और ऊहापोहग्रस्त नहीं था जिसमें हर निर्णय एक खतरे को जन्म देता चलता है और हर निर्णय की इयत्ता का प्रभाव दुष्प्रभाव कवि कलाकार और चिंतक के अगले निर्णयों पर पड़ता ही है। छायावादी कवि की समस्त चेतना और कलात्मक उपलब्धि की बुनियाद में उसकी वह दोहरी चेतना रही है, एक और मनुष्य के निजत्व की चिंता और मानव मात्र की चैतन्य शक्तिमत्ता की खोज और उसका विकास, कौमा तो दूसरी ओर भारत की पद दलित जनता और उसकी दुर्दशा के प्रति एक निश्चल और निर्मम आक्रोश। इसलिए गांधी और विवेकानंद ने किसी एक भारतीय भाषा के लेखक कवि को ही प्रभावित नहीं किया, उनका प्रभाव संपूर्ण भारतीय बौद्धिक चेतना पर समान रूप से लक्षित किया जा सकता है, चाहे वह रविंद्रनाथ हों या शंकर कुरुप या सुंदरम या सुब्रह्मण्यम भारती या काजी नजरुल इस्लाम या जीवनानंद दास अथवा निराला या सुमित्रा नंदन पंत। संपूर्ण भारतीय बौद्धिक चेतना पर जो एक विषण्ण अवसाद की छाया झलकती है और उसके साथ ही मनुष्य की उच्चतर चेतना और नव अभ्युत्थान का जो एक विराट संदेश मिलता है, वह इसी व्यापक भारतीय जन जागरण और उसके पीड़ाजनक निर्णयों का प्रतिफल है। इस व्यापक जन जागरण और अभ्युत्थान चेतना की पृष्ठभूमि में ही छायावादी कवि का मानसिक निर्माण हुआ है। यदि इसे ध्यान में रखा जाए तो ऊपर से अत्यंत विचित्र लगने वाली और लगातार दोहरे तिहरे स्तर पर क्रियाशील रहने वाली छायावादी कवि की रचना प्रक्रिया को समझना आसान होगा और उसमें एक गुणात्मक अंतर संगति आसानी से खोज कर निकाली जा सकती है। साथ ही छायावादी कविता के संपूर्ण भावपट का निर्माण उसकी अंतः प्रेरणा और उसकी विशिष्ट निर्मितियों तथा विशिष्ट उपलब्धियों को भी रेखांकित किया जा सकेगा। पैराग्राफ चेंज। अपने ऐतिहासिक बोध और मूल्य स्थापन में अनेक वाद विवादों के बावजूद आज छायावादी कविता के आविर्भाव उद्देश्य और उपलब्धि के बारे में अत्यधिक स्पष्टता से विवेचन और मूल्यांकन का प्रश्न आज उठाया जा सकता है। इस संबंध में हम एक नकारात्मक वाक्य से अपनी बात शुरू करेंगे, यह कि छायावादी कविता का आविर्भाव मात्र एक भाषागत विद्रोह ही नहीं था, जैसा कि अनेक बार यह बात आलोचकों और छायावाद पर शोध ग्रंथ लिखने वालों ने कही है कि वह द्विवेदी युगीन भाषा की इतिवृत्तात्मकता और स्थूल वर्णात्मकता के विरुद्ध भाषागत अभिव्यंजना का अंतर्मुखी प्रयत्न था। वास्तव में कवि की भाषा में अंतर तभी होता है जब उसकी संपूर्ण काव्यानुभूति की बनावट में अंतर आ जाए। काव्यानुभूति की बनावट का एक नया रूप स्वयं ही अपने लिए एक नई भाषा का आविष्कार कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि भाषा की यह चेतना अनुभूति की चेतना से अलग और स्वतंत्र रूप में नहीं आती। अतः छायावादी काव्य के आविर्भाव को केवल भाषा के नवीन आविर्भाव या प्रयत्न से जोड़ना भ्रामक है। दरअसल भाषा का प्रश्न छायावादी कवि के सामने अपनी पृथक अनुभव दिशा के साथ साथ ही जुड़ा हुआ आया है। जिस तरह गोपाल शरण सिंह या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त या रामचरित उपाध्याय के लिए भाषा का प्रश्न अलग था, उस तरह का प्रश्न छायावादी कवि के सामने नहीं था। या यूं कहें कि कविता और भाषा के इस अति प्रारंभिक सवाल और उसकी समस्या से अलग छायावादी कवि के लिए विद्रोही होने के कारण कहीं अधिक गहरे और महत्वपूर्ण थे और कविता की संपूर्ण जीवंतता से संबद्ध थे। गोपाल शरण सिंह के लिए मुख्य समस्या यह थी कि वे सवैया या घनाक्षरी छंद को खड़ी बोली में लिख सकते हैं या नहीं। दूसरी बहुत सी से बाह्य और अति साधारण विषयों के लिए अगर ब्रज भाषा का लालित्य प्रतिकूल पड़ता है तो उसके लिए वे या दूसरे उपयुक्त कवि खड़ी बोली का उपयोग करेंगे। उदाहरणार्थ --, काशी फल कुष्मांड कहीं है, कहीं लौकियां लटक रही हैं --, अथवा --, ऐसी सुविधा और कहाँ है, थोड़े में निर्वाह यहाँ है --, जैसी उक्तियों को कविता का रूप देने की बात एक ब्रजभाषा का कवि सोच भी नहीं सकता था। उसे --, लौकियों के लटकने --, या --, कुष्मांड --, शब्द के ही काव्यत्व संपन्न होने में संदेह था। न ही उसने थोड़े में निर्वाह जैसी बात पर कविता में विचार करने की ही सोची थी। इसी तरह --, गुजर जाएंगे दिन गुजरते गुजरते कि उतरेगा यह मैल उतरते उतरते --, ब्रैकेट नारायण प्रसाद बेताब --, जैसी उपदेशात्मक भाषा के प्रयोग की समस्या इधर छायावादी कवि के सामने भी नहीं थी। भाषागत विद्रोह की जितनी गहरी चेतना और आवश्यकता पुन छायावादी कवि को थी, वैसी हिंदी कविता के इतिहास में और कहीं नहीं मिलेगी। उसके पीछे एक कारण था --, एक सर्व स्वीकृत काव्य भाषा --, ब्रजभाषा --, का परित्याग करके नव विकसित बोली का कविता के रूप में प्रयोग। निश्चय ही इस विवशता और चुनौती के पीछे ब्रज भाषा का भयावह काव्य रूढ़ियों के जाल में फंस जाना और दूसरी ओर बदली हुई राजनैतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और व्यक्ति चेतना की परिस्थितियां थीं। इन दोनों परिस्थितियों के कारण द्विवेदी युग की कविता का मूल स्वर राष्ट्रवादी तो है, लेकिन एक संकीर्ण अर्थ में ही राष्ट्रवादी इस कविता युग को लेकर राष्ट्रीयता और राष्ट्रप्रेम या उसके स्वदेशी होने की इतनी प्रशस्ति आलोचकों ने की ही है। आज इस तरह के राष्ट्रप्रेम को --, संकीर्ण राष्ट्रवाद --, कहना सहसा चौंकाने वाला लगेगा, लेकिन ऐसा करने के पीछे कोई दुराग्रह या द्विवेदी युग की कविता की अवमानना नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक निश्चित दृष्टिकोण है जो उसके बाद आने वाली छायावादी काव्य प्रवृत्ति को समझने में मदद करता है। --, संकीर्ण राष्ट्रवाद की कविता (close) कहकर द्विवेदी युग की कविता का अवमूल्यन करने की जगह हम उसे उसके सही संदर्भ में रखने की एक निष्पक्ष कोशिश कर रहे हैं, विशेषकर तब जबकि छायावादी कवि का मानसिक विकास भी लगभग उन्हीं परिस्थितियों में होते हुए वह भारतीयता के एक निश्चित दायरे के ऊपर उठकर एक समग्र मानवता की खोज और एक सार्वभौमिक मूल्यवत्ता को उपलब्ध करने में सचेष्ट दिखाई देती है। इस तरह यह बात आज निसंदेह रूप से कही जा सकती है कि छायावादी कविता के मूल उद्भव के पीछे भाषा की सचेतना की जगह काव्य मूल्य की चेतना अधिक प्रखर है। छायावादी कविता के उद्भव की इस प्रमुख उद्भावना को नज़रअंदाज करते रहने या उसे गौण रूप में देखते रहने के कारण ही छायावाद पर अनेक लांछन और गलत आरोप लगाए गए, जो काफ़ी दिनों तक आलोचना अथवा विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में प्रचलित रहे। उदाहरणार्थ, यह एक सर्वस्वीकृत धारणा सी बन गई कि छायावादी कविता का अर्थ रोमांटिक, मांसल और भावना प्रधान व्यक्तिमूलक काव्य से है। इस धारणा को छायावादी कवियों की प्रारंभिक कविताओं ने बहुत हद तक पुष्ट भी किया। उसकी वजह निश्चित रूप से इस काव्य विद्रोह को एक व्यक्ति सापेक्ष नैतिक स्वीकृति देना था और कविता के उपादानों को प्रकृति प्रेम, रंग और संबोधनों के बीच से उठाना था। शुरू में कविता के संपूर्ण भाव वेश से उद्भूत अंतिम परिणाम या उसके नैतिक संदेश या चिंतनगत उद्देश्यों पर न जाकर आलोचकों की दृष्टि कविता में प्रयुक्त इन उपादानों पर ही अटक कर रह गई। लेकिन धीरे धीरे जब आज वे सारे के सारे नर्व निर्मित काव्य उपादान स्थिर हो गए हैं और बहुत कुछ उनके अर्थ और उनकी बिंब परिणति से हम परिचित हो गए हैं, हमें उनके अंदर जाकर उस कविता की मूल अवधारणा को टटोलने पर यही सत्य मिलता है कि छायावादी कविता के उद्भव के पीछे उसके पूर्व की सारी हिंदी कविता के समानांतर एक मूल्यगत विद्रोह की भावना ही प्रमुख थी। यह मूल्यगत विद्रोह और तत्कालीन पूर्ववर्तियों या रीतिवादियों से न होकर भक्तिकालीन कविता की गहरी प्रपत्ति भावना और उसकी महाकाव्य मूलक प्रवृत्ति से भी था। जाहिर है, यह चुनौती कोई मामूली चुनौती नहीं थी। हिंदी कविता की संपूर्ण मूल्यगत उपलब्धियों पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उसके समक्ष नैतिक मानवीय मूल्यों को एक नई सार्वभौमिकता से प्रतिष्ठित करने का यह आग्रह एक बहुत बड़ा आग्रह था। इसी अर्थ के समानांतर हमने द्विवेदी युगीन हिंदी कविता को एक संकीर्ण राष्ट्रवाद की कविता कहा है, क्योंकि उस युग के सारे कवियों की मूल चेतना -भाषा -विषय वस्तु -परिणाम और मूल्य -इन सभी दृष्टियों से भारतीय और मध्य देश की सीमाओं में बंधी है। उसके आदर्शों और लक्ष्यों का तेवर अपनी सारी वर्णनात्मकता के बावजूद भावुकता -प्रधान है। यह भावुकता उस चुनौती के कारण आई है जो इस काल के कवि को ब्रजभाषा और ब्रजभाषा के रीतिवादी कवियों को और स्वामी दयानंद सरस्वती तथा अन्य धर्म सुधारकों और समाज व्याख्याओं ने उसके समक्ष प्रस्तुत कर दी थी। निश्चय ही इस तरह की चुनौती को परिणति एक आदर्शवादी अभिधा प्रधान भावुकतापूर्ण काव्य में ही हो सकती थी, जिसमें मुखरता (loud thinking) अधिक हो, जबकि छायावादी कवि इन समस्त राष्ट्र उद्बोधनों को आत्मसात करते हुए भी कविता को इस तरह की समसामायिकता और एक देशिकता के ऊपर एक सार्वभौमिक क्षण तक ले जाने के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ता है। इस सार्वभौमिक क्षण तक ले जाने में वह उस पुरातनता और रूढ़िबद्ध मूल्यों से मुक्ति भी चाहता है, जहाँ हिंदी के भक्त कवि अपनी संपूर्ण और सार्वभौमिक प्राप्ति भावना ब्रैकेट शरणागति ब्रैकेट क्लोज से एक बार पहुँच चुके हैं। उस तरह की भाव तन्मयता और तथाकथित सामग्री से छुटकारा पाने में ही छायावादी कविता का सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आधुनिक होना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज निहित है। मुक्ति की यह कामना अपने को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों और वर्तमान वैज्ञानिक विकास और मनुष्य की ही एक विचित्र सी असहाय नियति से अपने को जोड़ने के लिए है। इसलिए छायावादी कविता का संपूर्ण भावपुट आधुनिक है और उसकी समस्त चेतना एक नए प्रकार की विशाल नैतिक मानववादी भूमि पर प्रतिष्ठित है। इस संदर्भ में पंत जी की वह शक्ति द्रष्टव्य है जहाँ पर उन्होंने छायावाद की ऐतिहासिक दृष्टि से अनुपयोगी विगत वास्तविकता को अपनी बौद्ध दृष्टि से अतिक्रम कर नवीन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यथार्थोन्मुख आदर्शों की खोज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट छायावादी पुनर्मूल्यांकन ब्रैकेट क्लोज कहा है। छायावादी कवि की यह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इतिहास दृष्टि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज केवल अपने पूर्ववर्ती कविता धारा के विरोध या चुनौती से न उपजकर संपूर्ण हिंदी कविता की मूल्यगत उपलब्धि को सर्वथा नई साहसिक चुनौती देने के कारण उत्पन्न हुई है। यथार्थ ब्रैकेट वास्तविकता को अनुपयोगी और विगत सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज मानना अपने आप में छायावादी कविता की एक विशेष और लंबा ऐतिहासिक दायित्व सौंपना है। इस ऐतिहासिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए और छायावादी कविता की शक्तिमत्ता जीवंतता और मूल्यवत्ता और उसके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा व्यक्तित्व सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज को प्रतिष्ठापित करते हुए पंत जी ने लिखा डैश डबल इन्वर्टेड कॉमा यद्यपि एक दृष्टि से उसमें ब्रैकेट छायावादी में ब्रैकेट क्लोज भक्ति काल की भाव तन्मयता तथा समग्रता का अभाव हो, पर दूसरी दृष्टि से वह भक्ति काल की सांप्रदायिकता कॉमा एकांगिता आदि से मुक्त कॉमा व्यापक विश्व चैतन्य के स्पर्श से युक्त कॉमा निखिल मानव समाज के लिए अधिक भावात्मक बोध लिए हुए होने के कारण काव्य मूल की कसौटी में अधिक लोकप्रिय नहीं तो अधिक श्रेष्ठ अवश्य है, क्योंकि वह अपनी अंचल छाया में भावी मानव मूल्य एवं भावी जीवन ज्योति अपनी कलात्मक शोभा में संजोए हुए है। डैश मध्ययुगीन संतों की तरह छायावादी कवि आत्म ब्रह्म और आत्म परिष्कार की खोज में न जाकर विश्वात्मा और विश्व जीवन की खोज में अग्रसर हुए। अतः उनकी प्रेरणा का स्रोत मध्ययुगीन भारतीय अंतश्चेतना ब्रैकेट साइकी ब्रैकेट क्लोज न होकर विश्व चेतना ब्रैकेट यूनिवर्सल साइकी ब्रैकेट क्लोज रही डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज छायावाद ब्रैकेट छायावाद पुनर्मूल्यांकन ब्रैकेट क्लोज पैराग्राफ चेंज। इसी तरह हम कह सकते हैं कि संपूर्ण हिंदी कविता की पृष्ठभूमि में छायावादी कविता एक नए ऐतिहासिक बोध से संयुक्त कॉमा एक सार्वभौमिक मानवतावाद को नैतिक मूल्य के रूप में स्वीकृत कर कविता को उसकी कलात्मक और नैतिक चेतना ने सार्वभौमिक क्षण तक ले जाने का सर्वथा एक नया प्रयत्न है। परिभाषा देने का यह प्रयत्न सिर्फ छायावादी कविता को पुरानी आलोचना और पूर्वाग्रह के जाल से मुक्त करने और उसको सही संदर्भों में रखने के लिए है। छायावादी कविता को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रोमांस लता सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के जिस प्रच्छन्न सीमित काव्य मूल्य से जोड़ा गया है वह इस कविता धारा की अनेकानेक उपलब्धियों को झुटलाता और नकारता है और इस तरह उसका एक संपूर्ण अध्ययन और मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता। ये प्रच्छन्न प्रशंसात्मक और गुण रूप पूर्वाग्रह अनेकानेक कठिनाइयों और कविता धारा का मजाक उड़ाने और न समझ सकने तथा गलत व्याख्याओं के कारण उत्पन्न हुए हैं। इन व्याख्याओं से छायावाद के कई मूर्धन्य कवि आक्रांत भी रहे हैं और उन्होंने अपनी कविता को की विश्वजनीन संवेदनाओं पर सीधे दृष्टि न डालते हुए आलोचना के इन मानदंडों की स्वयं व्याख्या करने या उन्हें परिभाषित करने की भी कोशिशें की हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा छायावाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नाम को लेकर ही जो इस कविता धारा को एक व्यंग्योक्ति के रूप में दिया गया था। डैश स्वयं प्रसाद जी और महादेवी वर्मा ने अपने अपने ढंग से अपनाने और परिभाषित करने की कोशिश की। निश्चय ही उन्होंने परिभाषा के उपादान अपनी कविताओं से ही लिए, लेकिन एक व्यंग्य के रूप में प्राप्त उस नाम को उन्होंने गंभीरता पूर्वक तो लिया ही। प्रसाद जी का इस कविता को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पारदर्शी वेदना से जोड़ना और महादेवी का उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रहस्य चैतन्य सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की परिकल्पना से परिपूर्ण करना उनकी अपनी कविताओं की संगति में अधिक उचित तो मालूम पड़ता है, लेकिन संपूर्ण कविता धारा के मूल्यांकन के लिए ये परिभाषाएं आज अक्सर छोटी लगती हैं। इस संबंध में श्री सुमित्रा नंदन पंत का दृष्टिकोण हमेशा विश्लेषणात्मक और मूल्यपरक रहा है। उन्होंने कविता के कला मूल्यों और वस्तु की ऐतिहासिक और निजात्मक व्याख्या अधिक की है और इस तरह कविता को किन्हीं निश्चित और संकीर्ण परिभाषाओं में न बांधकर उसके अध्ययन के क्षेत्र और संभावनाओं को अधिक महत्व दिया है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पल्लव सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज की भूमिका से लेकर कॉमा आधुनिक कवि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आधुनिक कवि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रश्मि बंध सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज चिदंबरा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज आदि सारे काव्य संग्रहों कॉमा संकलनों की भूमिकाओं में उनका दृष्टिकोण हमेशा व्याख्या परक मूल्यपरक अध्ययन परक और कविता और युग और इतिहास और कवि की अंतःसंगति की एक खोज रहा है। यह द्रष्टव्य है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पल्लव सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज की भूमिका की मूल दृष्टि परिभाषात्मक न होकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अपनी कविता ब्रैकेट और इस तरह संपूर्ण छायावादी कविता ब्रैकेट क्लोज की कलात्मक और वस्तुगत उपलब्धियों की अंतःसंगति की खोज है। इस संबंध में आगे कवि की विभिन्न काव्य दशाओं पर विचार करते हुए हम विस्तार में जाएंगे। यहाँ केवल इतना ही कि छायावादी कविता के विश्लेषण में पंत जी की दृष्टि कवितागत उपलब्धियों को परिभाषाओं की संकुचित सीमा में बंधने और उसके बाहर पड़ने वाले प्रसंगों को नकारना नहीं रहा है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा निराला सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इस संबंध में बिल्कुल तटस्थ या आत्मस्थ रहे हैं, सिंगल वट कॉमा, प्रबंध प्रतिमा सिंगल वटेड कॉमा क्लोज कॉमा सिंगल वटेड कॉमा चाबुक सिंगल वटेड कॉमा क्लोज या सिंगल वटेड कॉमा चिंतन सिंगल वटेड कॉमा क्लोज के अधिकांश निबंध कविता की आंतरिक खोज और दूसरे कवियों के प्रसंग विवरणों से अधिक संबंध है। उनकी व्याख्याएं एक विशुद्ध कलावादी आलोचना या प्रभाववादी और विवरणात्मक विश्लेषण के अधिक निकट पड़ती है। वास्तविकता यह है कि पंत और निराला दोनों ही छायावाद की तथा कथित भ्रांति मूलक अवधारणाओं से अपने अपने ढंग से प्रभावित या आतंकित नहीं हुए हैं। जहां पंत कविता की गतिशील उपलब्धियों के प्रति सचेत हैं और उसकी प्रयोग धर्मिताओं की व्याख्या से कविता की भाव परिधि को बढ़ाते चलते हैं, वहां निराला अपने अंदर और बाहर के अनेक कारणों और वैषम्यों से इस तरह के प्रयत्न से अलग थलग और तटस्थ हैं। 3. उपयुक्त भूमिका के पश्चात अब हम पंत जी के संपूर्ण काव्य विकास और उससे उद्भूत एक सार्वजनिक नैतिक अनुशासन का अध्ययन कर सकते हैं। पंत जी ने एक स्थान पर कविता को सिंगल वर्टेड कॉमा परिपूर्ण क्षणों की वाणी सिंगल वर्टेड कॉमा क्लोज पल्लव की भूमिका कहा है। हम इस परिपूर्ण क्षण से अनेक सारे काव्य की उस नैतिक दृष्टि को जोड़ सकते हैं जो उनकी अनेक स्तरीय काव्य दिशाओं में आसानी से पकड़ में नहीं आती। ध्यान देने की बात है कि कविता की परिभाषा के लिए कविता के उपादानों - शब्द शिल्प और अनुभव संस्थान पर न जाकर पंत जी ने उसका संबंध समय की भीतरी इयत्ता से जोड़ा है। समय की यह परिपूर्णता कवि की निजी आंतरिक परिपूर्णता से बांधी गई है, संदेह रहित अंतर्दृष्टि से। एक बात और भी ध्यान देने की है कि यह परिभाषा उनके एक महत्वपूर्ण किंतु प्रारंभिक कविता संग्रह ब्रैकेट पल्लव प्रकाशन वर्ष 1926 ब्रैकेट क्लोज में दी गई है। ये दोनों ही बातें दो महत्वपूर्ण संभावनाओं और परिणामों की ओर इशारा करती है। पहला कॉमा कवि का एक निर्व्यक्तिक दृष्टिकोण और वस्तुवादी चेतना की उपलब्धि, दूसरा कॉमा सौंदर्य चेतना और भाव चेतना का संश्लेषण, इन सारे उपादानों और चिंतन के गूढ़ महत्वपूर्ण परिणामों से पंत जी के समस्त काव्य वैभव का निर्माण हुआ है। ये सिंगल इनवर्टेड कॉमा परिपूर्ण क्षण सिंगल इनवर्टेड कॉमा क्लोज अपनी संपूर्ण भाव सत्ता के साथ साथ कवि के काव्य चिंतन के साथ निरंतर विकसित होते गए हैं और अपनी परिपूर्णता में उन्होंने चेतना के सारे स्तरों को क्रमशः आत्मसात और अंगीकार कर लिया। चेतना के इन स्तरों का एक सूक्ष्म क्रम पंत जी के काव्य विकास में लक्ष्य किया जा सकता है - कवि इस रूप में - सौंदर्य चेतना - बौद्धिक चेतना - भू चेतना और सूक्ष्म चेतना। निश्चय ही विकास का यह क्रम बहुत अलग अलग या साफ साफ बटा हुआ नहीं है। अक्सर यह क्रम एक दूसरे को अतिक्रमित भी करता है - और इस तरह पंत जी के संपूर्ण काव्य की अंतः चेतना और अंतः संगति की यथार्थवत्ता को उजागर करता है। पैराग्राफ चेंज उच्छ्वास सिंगल वर्टेड कॉमा से लेकर सिंगल वर्टेड कॉमा गुंजन सिंगल वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट उच्छ्वास कौमा वीणा कौमा ग्रंथि कौमा पल्लव कौमा और गुंजन तक की कवि ब्रैकेट क्लोज तक की कविता का संपूर्ण भाव पर कवि की सौंदर्य चेतना का काल है। शब्द शिल्प भाव भाषा और अंतर उद्बोधन सभी दृष्टियों से कवि एक अत्यंत सूक्ष्म कौमा बारीक और हृदयहारी सौंदर्य की सृष्टि करता है। यह कहना उचित होगा कि वह कविता के बाहरी और भीतरी दोनों की उपादानों से सौंदर्य खोजता और प्रतिष्ठापित करता हुआ मालूम होता है। निश्चय ही यह सौंदर्य दृष्टि लोकमंगल से पृथक अथवा एकांगी नहीं है कौमा, किंतु उसका स्वर और उसकी रचना बहुत कुछ अंतरंगता के एकांत धरातल पर हुई। उसकी यह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अंतरंगता सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ही वह वैशिष्ट्य है कॉमा जो छायावाद के सारे कवियों में पंत के व्यक्तित्व को सर्वाधिक काव्य कुशल और मुखर बना देता है। सौंदर्य दृष्टि के इस प्रयत्न के मुख्य उपादान हैं डैश प्रकृति प्रेम और आत्म उद्बोधन। प्रकृति जहां अपने आप में एक बाह्य उपादान के साथ ही एक साध्य का भी रूप ग्रहण करती है, वहीं प्रेम उसमें अंतस्ग्रथित है और बहुत हद तक आत्म उद्बोधन भी। इसलिए शब्दों के चुनाव और भाषा की कार्यता अक्सर रंगों और क्रियाओं के माध्यम से प्रकट होती है। इस रूप में पंत जी के प्रारंभिक कविता में एक सर्वथा अधुनातन तत्व नाटकीय तत्व ब्रैकेट ड्रामेटिक एलिमेंट ब्रैकेट क्लोज का प्रादुर्भाव दिखाई देता है जो हिंदी कविता में अभी तक कहीं नहीं आया था। प्रेम और आत्म उद्बोधन के सारे प्रसंगों के अधिकांशतः इन प्रकृति चित्रों के में सग्रंथित हो जाने के कारण एक ही कविता एक स्तर पर अपनी रमणीय चित्रमयता के कारण आकर्षक रहती है। कौमा तो दूसरे स्तर पर उसके अंतर्वर्ती धारा अपनी व्यंजना में एक सर्वथा दूसरे और अछूते वर्ग को ध्वनित और प्रसारित करती है। चित्रमयता और अर्थगर्भिता की इस दोहरी प्रत्यक्षवी से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पल्लव सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और गुंजन सिंगल काल की प्रायः अधिकांश कविताएं परिपूर्ण हैं और उनको किसी भी एक दृष्टिकोण से रेखांकित करना कठिन ही नहीं दुराग्रहपूर्ण भी होगा और कविताओं के महत्व और उनकी मूल्यवत्ता को सीमित करना होगा। यहाँ पर एक उदाहरण इसके लिए पर्याप्त होगा। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल ज्योतित कर जल का अंतस्तल जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक्छिप पल पल क्रॉस 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 लहरों के घूंघट से झुकझुक दशमी का शशि निज त्रियक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक दो बाहों से दुरस्थ तीर धारा का कृश तो कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर डॉट 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 क्रॉस 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 वह कौन विहग क्वेश्चन मार्क क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक छाया की कोकी को विलोक डॉट 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 ब्रैकेट नौका विहार ब्रैकेट क्लोज। ये कुछ पंक्तियाँ नौका विहार कविता के बीच से जगह जगह से उठाई गई हैं। सारी कविता की संरचना और शब्द प्रयोग में एक गहरी अनुभूति और संश्लिष्टता है। ऊपर से लग सकता है कि संध्या के समय कौमा नौका विहार का एक वर्णनात्मक चित्र है। निश्चय ही अपनी चित्रमयता में यह अनुपम है, लेकिन यह प्रकृति वर्णन निश्चल या स्थिर नहीं डैश इसमें एक क्षिप्र गति है और रंग और क्रियाशीलता का गहन आकार डैश जो शब्दों के माध्यम से सिर्फ अभिव्यक्त ही नहीं होता कौमा क्रियाशील भी लगता है। सौंदर्य रचना की यह क्रियाशीलता निश्चित रूप से सहसा स्तब्ध कर देती है। जब यह बात मन में आती है कि छायावाद पूर्व की कविता की वर्णनात्मकता और चित्रमयता कितनी स्थूल निष्पंद और शिथिल थी। पैराग्राफ चेंज। लेकिन उन उद्धरणों को यहाँ रखने का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है। इस चित्रमयता के भीतर सर्वत्र प्रेम की एक विविध कोणों और कार्य गतियों वाली भंगिमा और अंतरकथन गुथा हुआ है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा विस्फारित नयनों से कुछ खोजने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज में लहरों द्वारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लघु दीपों सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट तारकों ब्रैकेट क्लोज को अंचल की ओट करके लुकने छिपने में दशमी के शशि का घूंघट से तिर्यंक मुख दिखलाने में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कृष कोमल शरीर आलिंगन के लिए अधीर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होने में डैश हर कहीं शब्द केवल प्रकृति वर्णन के अंग न होकर एक दूसरे अर्थ की गहरी व्यंजना से संयोजित है। अनेक बार आलोचकों ने इसे प्रकृति के मानवीकरण जैसे रट्टे रटाए फार्मूले में रख दिया है। वास्तव में यहाँ उस अर्थ में प्रकृति के उपादनों में मानवीय क्रियाओं का आरोपण नहीं है। ये दोनों अर्थ सर्वथा पृथक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तीर दो बाहों सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज का भी हो सकता है या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दो बाहें भी दो किनारे हो सकते हैं। यहाँ कोई भी प्रसंग गौण अथवा कम महत्वपूर्ण नहीं है। दोहरे अर्थों की यह संयोजना संपूर्ण हिंदी कविता में पहली बार इस तरह दृष्टिगत हुई और निश्चय ही पंत जी की छायावादी काव्य को यह एक महत्वपूर्ण देन है। इन दोहरे अर्थ डैश संयोजनों से पंत जी की इस काल की कविताओं में एक विराट और पवित्र संबोधन का स्वर प्रायः मुखर हो उठा है। संभवतः इस काल के समस्त काव्य वैभव को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा संबोधन की कविता सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कहना उचित होगा। संबोधन की इसकी यह गरिमा प्रत्येक कविता को एक दूसरे ही स्तर पर व्यष्टित करती चलती है, जिसके लिए हम इस काल की कविता को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अंतरंगता की कविता कह सकते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अकेले पल्लव काव्य संग्रह में ही पल्लव विनय पल्लव कौमा विनय कौमा विची विलास कौमा मधुकरी कौमा अनंग कौमा मोह कौमा वसंत श्री कौमा स्वप्न कौमा मुस्कान कौमा निर्झर गान कौमा छाया कौमा शिशु कौमा नारी रूप कौमा नक्षत्र कौमा सोने का गान कौमा निर्झरी कौमा जीवन यान कौमा बादल कौमा विश्व छपी कौमा बाल बालापन कौमा विश्वव्याप्ति कौमा याचना और परिवर्तन जैसी 23 कविताएं संबोधनात्मक है। संबोधन से उत्पन्न होने वाले इस वैशिष्ट और उसके मर्म का अध्ययन स्वयं अपने आप में अध्ययन का एक पृथक विषय है। स्थानाभाव के कारण हम इस पर यहाँ संक्षेप में कुछ विचार करेंगे। यह संबोधन वास्तव में सौंदर्य सृष्टि के प्रति एक आंतरिक और व्यक्ति विशिष्ट संगोपानता की वजह से पैदा हुआ है। सहसंपर्क की इस कथन शैली से संपूर्ण कविता का कलात्मक धरातल एक निजी पट पर खुलता है और उसकी अर्थ संकेत अभिव्यक्ति को एक नागरशालीनता, विनम्रता और संकोच से बांध देते हैं। साथ ही कवि अपनी अभिव्यक्ति और भाव संवेदना के बीच किसी भी दूसरे अस्तित्व को आने नहीं देता। इससे कविता के कथ्य और उसकी संरचना में एक दूसरे ढंग का संप्रेषण और सौंदर्य उद्भाषित होता है जो साधारण रूप से संभव नहीं हो पाता। संरचना और कथ्य की यह आत्मीयता श्री सुमित्रा नंदन पंत की इस काल की कविताओं की एक दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसकी ओर आलोचकों का ध्यान अभी तक बहुत कम गया है। संबोधन की वे मुद्राएं एक अजीब सी निश्चल पवित्रता अभिव्यक्ति देती है। इस तरह की निश्चल पवित्रता एक संकोच भरा खुलापन और कुहरीली विनम्रता प्रकृति और प्रेम की इन सारी रचनाओं में द्रष्टव्य है। प्रेम भावना कहीं पर उच्च श्रृंखल या जड़ या आवेशपूर्ण अथवा स्वार्थ जनित नहीं है। भावना के उतार चढ़ाव या थमाव अत्यंत सजग और साथ ही साथ मंथर है। इन कविताओं का उत्ताप एक सुखद उत्ताप है और उनकी शीतलता एक सुखद शीतलता अपनी सौंदर्य सृष्टि की इस विशिष्टता में भी पंत अकेले हैं। जबकि दूसरे छायावादी कवियों में प्रेम वर्णन और प्रकृति की चित्रमयता का संयोग बहुधा एक आवेश का उद्घाटन करता है। दूसरे कवियों में यह मांसलता निश्चय ही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इच्छा के निसंकोच सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज से जुड़ी हुई है, जबकि पंत को यह मांसलता इच्छा और कामना के गहरे उत्ताप में एक दृष्टि ढूंढती है और उसे परिशमित करती है। इस प्रेम वर्णन को कवि और कविता संरचना की उस आदिम मनोवृत्ति से हम नहीं जोड़ सकते जिसमें कामना का विध्वंस बहुधा परिलक्षित होता है, बल्कि इस रोमांस लता को हम पवित्र मांसलता के रूप में रख सकते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति में निहित सौंदर्य चेतना निश्चय ही एक नए प्रकार के संस्कार युक्त मनुष्य के भावना पट से उद्भूत सौंदर्य दृष्टि से परिचालित होती है। इस संस्कार पूर्णता को ध्यान में रखकर ही संभवतः पंत जी ने काव्य रचना के लिए परिपूर्ण क्षणों वाली बात उठाई है। परिपूर्ण क्षण वास्तव में एक अंतरंग किंतु निर्व्यक्तिक दृष्टिबोध से सारी प्रेरणा को संचालित करते हैं, जिसमें कविता एक व्यक्तिक निर्व्यक्तिकता का व्यक्तित्व ग्रहण करती है। दायित्व की यह चेतना ही आगे चलकर कवि पंत की नई काव्य दिशाओं की खोज में प्रस्फुटित होती है। यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि दायित्व की यह चेतना संबोधन की उसी अंतरंगता से बंधी हुई है। संबोधन की यह अंतरंगता ऐसा नहीं है कि सन 32 या 35 के बाद पंत जी के रचनाओं से सर्वथा तिरोहित हो गई हो, बल्कि उसकी एक सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण रेखा उनकी बाद की और अधुनातन रचनाओं में भी ढूंढा जा सकती है। सॉरी मैं भी ढूंढी जा सकती है। उदाहरण के लिए द्रुत झड़ो नव है बापू के प्रति, सॉरी उदाहरण के लिए द्रुत झड़ो कौमा नव है कौमा बापू के प्रति ब्रैकेट युगांत कौमा कविंद्र रविंद्र के प्रति कौमा श्री अरविंद के प्रति कौमा श्री अरविंद के प्रति युगांतर कौमा अनामिका के कवि कौमा कृष्ण धन युगवाणी कौमा मजदूरिन के प्रति कौमा वाणी ब्रैकेट ग्राम्या कौमा हिमाद्री स्वर्ण किरण कौमा हिमाद्री ब्रैकेट स्वर्ण किरण कौमा कुर्मांचल के प्रति कौमा ब्रैकेट अतिमा कौमा संबोधन कौमा आगम निवेदन कौमा प्रार्थना कौमा ब्रैकेट वाणी कला कौमा धेनुए कौमा देहमान कौमा मधुशत्र कौमा सहज गति कौमा यज्ञ कौमा गीत खग कौमा पारदर्शी कौमा नवीन कौमा मूर्धन्य कौमा नया देश कौमा अनिवर्चनीय आदि ब्रैकेट कला और बूढ़ा चांद कौमा तुम कौन कौमा अमर पांत कौमा स्नेह दृष्टि कौमा विहंगिनी कौमा आश्रय कौमा दारू योषित दृष्टि कौमा अमर यात्रा कौमा भारत नारी कौमा उद्बोधन आदि किरण वीणा ब्रैकेट किरण वीणा कौमा जब तुम्हें मैं प्राण छूता कौमा तुम सोने के सूक्ष्म तार सी कौमा तुम नहीं होती कौमा सिर से पैरों तक कौमा कवि हूँ कौमा प्राण तुम्हारा कौमा तुम अनंत यौवन लता हो कौमा तुम्हें सुनहरी धूप कहूँ कौमा दृष्टि मुझे दो प्रिय कौमा आओ आओ आदि ब्रैकेट पौ फटने से पहले। तात्पर्य यह है कि कवि की संबोधन अंतरंगता उसी रूप में अक्षुण्य है जिसे निर्व्यक्तिक दृष्टि को कविता में पंत जी ने उपलब्ध किया है उसे सहज ही लक्षित किया जा सकता है। आलोचकों ने अपने अध्ययन का कोण यहाँ से निर्धारित न कर उनकी कविता की मूल्यवत्ता का निश्चित ठोस और बृहत्तर आधार खो दिया है। आने वाली पीढ़ियां पंत जी की इस तन्मय किंतु संस्कारपूर्ण आकुलता और दृष्टिबोध को अवश्य ही अपने अध्ययन का माध्यम बनाएंगी। पैराग्राफ चेंज। सौंदर्य चेतना से संयुक्त इस कालखंड की कविताओं की भाषा और उनके शिल्प का मूल्यांकन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वथा एक नई और एक प्रकार से अनिभिव्यक्त भाषा की खोज और उसकी रूप निर्मिति में पंत जी ने अथक परिश्रम किया है कौमा बल्कि यो कहना चाहिए कि भाषा को और शब्द को बाह्य विधानों से अंदर की ओर मोड़ने का काम पंत जी ने सर्वप्रथम किया। यह शब्द का उसके शरीर को अतिक्रमित करना है जिसमें शब्द और अर्थ को बाहर की ओर न फेंक कर अंदर की ओर लौटाता है। एक तरह से यह भाषा के संपूर्ण तंत्र को उलट देने की प्रक्रिया है और निश्चय ही मैथिली शरण गुप्त की कविता की लोकप्रियता के समक्ष शब्द की समस्त अर्थ सत्ता को अंदर की ओर लौटा लाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय रहा होगा। भाषा की यह अंतर्मुखता संपूर्ण काव्य की अंतरंगता की एक स्थायी मांग से उत्पन्न हुई होगी और है जिसका जिक्र हम ऊपर कर आए हैं। इसलिए यह कथ्य भाव पट से पृथक कोई चमत्कारिक प्रयत्न नहीं था। कौमा, जैसा कि कुछ आलोचकों ने अपनी नासमझी वश कहा है, जब शब्द की अर्थ सत्ता बाहर की ओर बढ़ने की जगह अंदर की ओर लौटाती है, तो उसका निश्चित परिणाम अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता तथा कथन की निगूढ़ व्यंजना होती है। वह निगूढ़ता ही पंत जी की कविता को एक साथ कई कई अर्थों से संयोजित करती चलती है। अतः यह निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि पंत के लिए भाषा और शिल्प की खोज कथ्य से इतर न रही है, न ही उसका अलग से कवि ने कोई महत्व ही प्रतिपादित किया है। यह एकमेकता हर महान कवि में परिलक्षित की जा सकती है, जहाँ भाषा की अर्थ सत्ता अपने को कथ्य के अंदर स्वयं रूपायित कर लेती है। कथ्य परिवर्तन से भाषा अपने आप बदल जाती है। अर्थ को अंदर की ओर लौटाने से पंत जी ने हिंदी कविता में पहली बार अमूर्त उपमानों, कौमा, अप्रस्तुत विधानों और लाक्षणिक प्रयोगों को सर्वथा एक नया विधान और सौंदर्य दिया है। कल्पना की उच्छल चित्रमयता इस संदर्भ में दृष्टव्य है। संभवतः इसी को लक्ष्य करके पंत जी ने कहा है कि "" मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ ". आधुनिक कवि की भूमिका ". अंदर की ओर लौटने से शब्द स्वयं मंज कर सूक्ष्म, कौमा, कोमल और चिकने हो गए हैं। उनका रंग, आकार और उनकी क्षिप्रता अत्यंत सौम्य और प्रभावशाली बन पड़ी है। इस अर्थ व्यंजना से में बहुत अमूर्त लाक्षणिक प्रयोगों को पंत ने अधिक उपयुक्त समझा है, क्योंकि वे कई कई अर्थों को एक साथ व्यंजित करने और उसे विचार और चिंतन के धरातल पे लाने में अधिक सहायक हैं। यहाँ कुछ एक उदाहरण देना उचित होगा। पछतावे की परछाई सी तुम भू पर छाई हो कौन, दुर्बलता सी अंगड़ाई सी, अपराधी सी भय से मौन, हम सागर के धवल हास में, जल के धूम गगन की धूल, अनिल फेन उषा के पल्लव, वारी वसन वसुधा के मूल, धीरे धीरे संशय से उठ, बढ़ अपयश से शीघ्र अछोर ". नभ के उर में उमड़ मोह से, फैल लालसा से निधि भोर ". ". वह एक अनंत प्रतीक्षा, नीरव अनिमेश विलोचन, अस्पृश्य अदृश्य विभाव, जीवन की साश्रु नयनशन ". इन तीनों उद्धरणों में अमूर्त प्रयोग देखने योग्य हैं। यह कोई चमत्कार प्रिय दूसरे दर्जे के कवि की उक्तियां नहीं है। हर अमूर्त उपमान प्रसंग को एक नए अर्थ में ढालता है और उसे एक सर्वथा अपरिचित, कोमल और प्रभावपूर्ण परिणति तक ले जाता है।